ओम शांति, ओम शांति। बाबा के घर में विशेष मधुबन तपोवन में तपोभूमि पर तपस्या करने का बहुत सुंदर चांस आप सबको मिला। बरसात भी बहुत अच्छा स्वागत कर रही है। शांतिवन में बरसात नहीं है, लेकिन प्रकृति कैसे खेल करती है। जब मैं ऊपर आ रहा था तो देखते आए कितना जबरदस्त झरने चल रहे हैं। बहुत सालों के बाद ऐसे झरने चले हैं। तो ये बरसात की सीजन, उसमें तपस्या करने का सुंदर अवसर मिलना, ये भी बहुत बड़ा भाग्य है। वैसे हर वर्ष हम सभी बरसात में ही भट्टियाँ करते हैं मधुबन निवासी, लेकिन अभी मधुबन निवासियों की भट्टियाँ कभी कभी हो पाती हैं, बाकी सभी सेंटर्स पूरा लाभ ले रहे हैं। बड़े सुंदर सुंदर विषयों पर आपको क्लासेज मिल रही हैं। क्लासेज तो सुनते ही रहते हैं, आवश्यकता है उसको अपने स्वरूप में लाने की। ब्रह्मा बाबा ने जैसी अपनी प्रैक्टिकल जीवन बनाई, जिन कदमों पर वो खुद चले, श्रीमत को सामने रखते हुए जो कदम ब्रह्मा बाबा ने उठाए, हम सब ब्राह्मण बच्चों के लिए बाबा की यही श्रीमत है कि बच्चे तुम भी कदम पर कदम रखते हुए आगे बढ़ो, कोई नया रास्ता लेने की ज़रूरत नहीं है, फॉलो फादर। कोई भी ब्रदर और सिस्टर को भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बाबा ने क्या किया, कैसे किया, कैसे उन्होंने अपनी संपन्नता संपूर्णता को प्राप्त किया। कई बाबा के बच्चे कहते हैं हमने साकार में तो बाबा को देखा ही नहीं है, तो बाबा को कैसे फॉलो करें। लेकिन बाबा जब अव्यक्त हुए, तो अव्यक्त होने के बाद जो बाबा की पदरामनी हुई, अव्यक्त मुरलियाँ हम सब ने सुनी, 48 साल तक हम सबको अव्यक्त पालना मिली, और उस अव्यक्त पालना में कोई ऐसी मुरली नहीं है जिसमें बाबा ने ये शब्द न बोले हों कि ब्रह्मा ने ऐसे किया, बाबा ने ऐसे किया। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया ऐसे आप बच्चे करते चलो। तो बहुत सारी बातें, जिसने अव्यक्त मुरलियों का अच्छा अध्ययन किया है उनको पता है कि ब्रह्मा बाबा ने इस स्थिति को जो प्राप्त किया किस आधार से किया। आज भी बाबा साकार मुरली में कहते थे कि कैसे बाबा ने एक धक से निर्णय ले लिया कि मुझे तो सब कुछ अर्पित करके, कन्याओं माताओं के आगे समर्पित करके, बहुत हल्का बन करके रहना है। और उसी निर्णय के आधार से बाबा ने कहा, बड़ा आनंद, बहुत खुशी का अनुभव होता है कि माताओं बहनों को जिस दिन से समर्पित कर दिया सब कुछ, उस दिन से कभी कुछ भी पूछा भी नहीं कैसे चलता है। तो ब्रह्मा बाबा के कदम हम सब जानते हैं, सुनते आए हैं। अभी बाबा कहता है बच्चे उन्हीं कदमों पर आगे बढ़ते चलो, आपको भी मंजिल मिल जाएगी, संपन्न और संपूर्ण आप सहज बन जाएंगे। इसलिए ब्रह्मा बाबा के कुछ कदम पहले मैं आपके सामने रखता हूँ। वैसे तो बहुत बार सुने हैं, और मेरा एक लक्ष्य रहता है कि जब जनवरी मास में हम पुरुषार्थ करते हैं तो जनवरी मास में ब्रह्मा बाबा के कदम ही हम यहाँ से भेजें, जिस पर सब ब्राह्मण उसको फॉलो करें। कभी 18, कभी 21, कभी पूरा पूरे मास का होमवर्क जनवरी मास में तैयार करके अव्यक्त मुरलियों से ही आपके पास भेजते हैं। आज वही टॉपिक हमें मिली है कि फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की कैसे आज्ञाओं को फॉलो किया, कैसे ब्रह्मा बाबा ने हर आज्ञा को श्रीमत को सिर माथे रख करके जो बाबा ने कहा। कई बार बाबा की मुरली में आप सुनते हैं कि अगर शिव बाबा ने इस ब्रह्मा मुख से बच्चों को कोई शिक्षा दी तो सबसे पहले मेरे कान सुनते हैं, मुख से निकला इस कान से पहले मुझे पता चला, बाद में बच्चों तक आवाज़ गई। तो जो कुछ शिव बाबा ने श्रीमत दी बच्चों को उसे ब्रह्मा बाबा ने पहले सुना, और पहले सुनते ही उस पर खुद चल करके बच्चों के आगे सहज करके सिखा दिया, ऐसे चलो ऐसे चलो, प्रवृत्ति में रहे, कोई चीज़ को छोड़ा नहीं, लेकिन सबके साथ रहते, इतने बड़े परिवार की पालना करते, ब्रह्मा बाबा कैसे न्यारे प्यारे कमल फूल समान रहे, कैसे उन्होंने अपनी श्रेष्ठ कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया, बाबा कई बार इसका वर्णन करते हैं। हम सब बाबा के बच्चे, जो बाबा की आज्ञाएं हैं, मुरली के द्वारा हमें आज्ञाएं मिलती हैं, अमृत वेले से रात तक अगर हम उन आज्ञाओं का पालन करते हैं, आज्ञाकारी बन करके रहते हैं, तो शिव बाबा की आज्ञाओं को पहले ब्रह्मा बाबा ने माना, चाहे ईश्वरीय नियम है, मर्यादाएं हैं, श्रीमत है, सब कुछ बाबा ने साकार और अव्यक्त मुरलियों में स्पष्ट करके बताया है कि बच्चे ऐसे ऐसे मुझे फॉलो करो, ऐसे ऐसे श्रीमत को सिर माथे रख करके उस पर चलते चलो। अमृत वेले उठने की आज्ञा दी, फिर सवेरे सवेरे ज्ञान रत्नों से स्वयं को संपन्न बनाओ, भरपूर करो, मुरली सुनने की आज्ञा दी, फिर कर्म में कर्मयोगी बन करके कर्म करो, कर्तापन का भान न आए, कर्म करो और न्यारे हो जाओ, समर्पित कर दो, कराने वाले ने करा लिया। भोजन करते हो, भोजन बनाते हो, उसमें बाबा की याद में रह करके बाबा को भोग लगा करके शुद्ध सात्विक भोजन खाओ, संग की परहेज रखो, जो संग व्यर्थ का है कुसंग है उससे बचाओ, अपने आप को बचाओ, श्रेष्ठ संग करो। रात को सोते समय बाबा को अपनी दिनचर्या सुना करके बाबा से बिल्कुल हल्के होकर के वायदा करके फिर सो जाओ बाबा की गोदी में। तो अमृत वेले से रात तक के लिए बाबा की आज्ञाएं हम बच्चों को मिली हुई हैं और सबके लिए एक जैसी हैं, ऐसे नहीं समर्पित के लिए अलग हैं, प्रवृत्ति वालों के लिए अलग हैं, लेकिन जो समर्पित बाबा के बच्चे कर रहे हैं, बाबा ने हर एक के लिए एक जैसे नियम बनाए। दूसरी संस्थाओं में अगर आप देखेंगे तो उनके गुरुओं की धारणाएं कुछ अलग होती हैं, प्रवृत्ति वालों की धारणाएं अलग होती हैं, सबके लिए एक जैसे नियम नहीं होते। जैन धर्म को आपने देखा है, जानते हो, उनके जो गुरु होते हैं बहुत त्याग से बहुत वैराग्य वृत्ति में रहते हैं, उनकी ड्रेस देखो, उनका खाना देखो, उनका पैदल चलना देखो, कैसी मेहनत करके तपस्वी जीवन जीते हैं। इनके फॉलोअर्स कितने ठाट बाट से मौज से रहते हैं, कहते हैं हम फॉलोअर्स हैं, बाबा कहता फॉलो तो कोई करते ही नहीं है, हम तो शिव बाबा के अगर फॉलोअर्स हैं, बच्चे भी हैं फॉलोअर्स भी हैं, और जो कुछ बाबा ने किया है, ब्रह्मा बाबा ने किया, उसको हम पूरा पूरा फॉलो करते हैं। इसलिए हर एक के लिए एक जैसे नियम, एक जैसी धारणाएं। अगर पवित्रता का व्रत कोई कुमार कुमारी लेते हैं, समर्पित बच्चे लेते हैं, तो भी बाबा ने प्रवृत्ति वालों को भी कोई इसमें छूट नहीं दी, बच्चे ये व्रत आपको भी घर गृहस्थ में रह करके लेना है, संगम युग है, कलयुग के अंतिम समय में तुम्हें पवित्र और योगी जीवन जीना है, जो रचना रची है उसको संभालो, लेकिन कमल फूल के समान रह करके, कीचड़ पानी का प्रभाव आपके ऊपर ना आए, लेकिन बहुत अलग हो करके पालना दो, संभाल करो, लेकिन उसमें लिप्त नहीं हो जाओ। ये सब बाबा की आज्ञाएं हैं, और उन आज्ञाओं पर चलने वाले आज्ञाकारी बच्चे ही बाबा के फॉलोअर हैं, बाबा को फॉलो कर रहे हैं। साथ साथ बाबा ने हम बच्चों को ईमानदार आनिष्ट बनाया है, एक एक बच्चे को बाबा कहते हैं मेरे बच्चे, आनेस्ट बच्चे हैं, ईमानदार हैं। और वो ईमानदारी ये है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने संकल्प को, अपने समय को, अपने श्वास को, अपनी संपत्ति को जरा भी कहीं इधर उधर नहीं खर्च किया। जब हम सब ने बाबा के आगे संकल्प लिया, ये सब कुछ बाबा तेरा है, अंदर से तो ये कह दिया है, भक्ति में तो ऐसे ही कहते रहे थे, मंदिर में गए सब तेरा है, घर में आए सब तेरा भी मेरा है। लेकिन अभी तो बाबा ने सुना है, चैतन्य में है, साकार में है, इसलिए बाबा कहता बच्चे जो कुछ तुमने कहा है ये सब तेरा है, अब तेरा समझ करके इसको ट्रस्टी बन करके संभालो, संभालो आप ही, बाबा क्या करेगा लेकर के। लेकिन उसमें मोह ममता नहीं रखना, उसमें मेरापन नहीं लाना। अगर मेरापन लाओगे तो दुखी होगे, बोझ है, भारीपन है, और ये बाबा की अमानत में बहुत बड़ी ख्यानत है। जब हमने बाबा को अर्पित कर दिया तो जरा भी अगर उसमें हम मनमत परमत यूज कर रहे हैं, चाहे संकल्पों के अंदर हमारे संकल्प बहुत फास्ट गति के चल रहे हैं, कई बार कई बुद्धि वाले होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, हर बात में क्वेश्चन करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, क्यों क्यों के क्यों लगा देते हैं। लेकिन जो बाबा के समर्पित बच्चे हैं, जब संकल्प को भी समर्पित कर दिया है, तो बिना श्रीमत के एक संकल्प भी नहीं कर सकते। जो कुछ चल रहा है नाटक के अंदर, बाबा कहता है बच्चे साक्षी होकर के देखो, प्रश्नों में नहीं उलझो। अगर ये प्रसन्न चित्त स्थिति बनानी है तो प्रश्नों में नहीं जाना। अगर कोई ब्राह्मण बच्चा अपनी स्थिति को बहुत खुशनुमा प्रसन्न चित्त रखना चाहता है तो उसको प्रश्नों में जाने की आवश्यकता नहीं। जो भी बातें हैं बाबा जाने, बाबा के बच्चे जाने। हम तो बच्चे बन करके रहते हैं, प्रश्नों में उलझते नहीं हैं, क्यों क्या कैसे में प्रश्नों में नहीं जाते। तो जिसने जो ईमानदार हैं वो संगम के एक एक संकल्प को सफल करते हैं, समय को सफल करते हैं, क्योंकि समय बड़ा अमूल्य है। हम जानते हैं एक एक सेकंड संगम युग का पद्मों की कमाई का है। जो हम संकल्प समय दूसरों की सेवा में लगाते हैं उससे हमारी कमाई जमा हो रही है। और अगर ऐसे ही बैठ गए इधर उधर की बातों में, पर चिंतन, पर दर्शन, तेरा मेरा, इसमें समय गंवाया, तो जैसे हमने समय के प्रति वफादारी नहीं रखी, ईमानदार हम नहीं हैं। क्योंकि संगम का समय एक एक घड़ी बहुत अमूल्य है। इसको जिसने यथार्थ रीति से समझा है वो कभी भी अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाता। जो समय मिलता है स्वचिंतन करता है, अच्छी तरह से अपने मन को बिजी करता है, अपनी उन्नति के कई साधन बनाता है। कई लोग कहते हैं कि हम कितना समय योग करेंगे, कितना समय पढ़ाई करेंगे, कुछ तो करना पड़ता है। बाबा कहता अच्छा कोई बात नहीं, बिजी रहो, लेकिन मन और बुद्धि को फ्री नहीं रखो, इसको ज्ञान और योग में बिजी करो, अच्छे चिंतन में बिजी करो। तो व्यर्थ से बचने के कई तरीके हैं। अगर मान लो आपके पास समय है, संकल्प आपके इधर उधर बह रहे हैं, उसको अच्छी पढ़ाई में, अच्छे चिंतन में, अच्छे स्थान पर बैठ करके योग करो, तपस्या करो। संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है और समय संगम का खजाना है, इसलिए इसमें जरा भी गफलत न हो और बहुत ईमानदारी के साथ इसको हम सफल करें। और तीसरी संपत्ति जो है, जो बाबा की दी हुई है, बाबा ने हमें कोई अपने प्रयोग के लिए संपत्ति अगर दी है, ध्यान देना वो भी कहीं व्यर्थ न जाए, वो बाबा की अमानत है। नए विश्व के निर्माण में, सतयुगी दुनिया बनाने में जितना हमारा धन लगेगा, जो आज बाबा कह रहे थे अगर कोई सुदामा की तरह कुछ थोड़ा सा भी करता है, देता है, तो उसको उसका कितना गुना रिटर्न मिल जाता है। तो ये बाबा की दी हुई संपत्ति जो हम यूज कर रहे हैं, ये कहीं भी इधर उधर व्यर्थ न जाए, हम ईमानदार बन करके उसको बढ़ाएं, उसको सफल करें। ट्रस्टी हैं हम सब, और ट्रस्टी उसको ही कहा जाता है जो बहुत ईमानदारी से पैसे का, धन का प्रयोग करता है। तो एक तरफ जैसे बाबा फुल आनेस्ट अपने यज्ञ के प्रति, बच्चों के प्रति, संगम के समय प्रति रहे, हम बच्चे भी इसमें फॉलो करें ब्रह्मा बाबा के समान। बाबा ने लास्ट दिन भी अपने समय को व्यर्थ नहीं किया, सोचा भी नहीं कि तबीयत ठीक नहीं है, ये है ये है, लास्ट दिन में भी सब कार्य किए, सफल किया। तो हम सब ब्रह्मा बाबा को देखते हैं कैसे बाबा आनिष्ट बन करके रहे यज्ञ के प्रति, और वफादारी है संबंधों में। कहते वफादार जो पत्नी होती है वो एक व्रता, सती व्रता, पतिव्रता या पिताव्रता बन करके रहती, उसके सिवाय और कहीं भी आँख न जाए। जब हम सबने संकल्प किया है कि मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, तो कोई भी देहधारी कैसी भी आत्मा हो, कितना भी गुणवान हो, रूपवान हो, धनवान हो, लेकिन मेरी नज़र में बाबा के सिवाय और कोई नहीं है, बाबा ही सबका दाता है। अगर कोई की कोई विशेषता है, कुछ उसको मिला हुआ है, तो ये प्रभु देन है उसको। वो खुद भी अगर अपना समझता है तो भी बाबा कहते हैं ये मेरा समझना ये महिलापन है। इसलिए कभी भी प्रभु देन को हम अपनी विशेषता, अपने गुण, अपनी नेचर समझ करके उसको यूज न करें। इसलिए बाबा ने हम सब बच्चों को बहुत वफादार बनाया है। वफादारी से चलना, एक व्रता हो करके रहना, एक बाबा के सिवाय और कोई भी आत्मा मुझ आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित न करे। तो ब्रह्मा बाबा एक व्रता बन करके रहे, और हमने अपनी दादियों को बहुत समीप से देखा। कुछ भी वो कैसा भी सहयोगी स्नेही आ जाए, लेकिन दादियों की नज़र में वो कभी भी उनके प्रभाव झुकाव में नहीं आई। ठीक है, इसका भाग्य, ये भाग्य बना रहा है, ये बाबा से अपना अधिकार ले रहा है, ये वर्षा ले रहा है, मुझे इससे व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए। बहुत अंदर से वफादार बन करके किसी भी देहधारी में उनकी आंख नहीं गई। दो प्रकार से ही आत्माएं प्रभाव डालती हैं, एक कोई न कोई सहयोगी बन करके विशेषताओं के आधार से, गुणों के आधार से अपना प्रभाव डाल देती हैं, उनसे थोड़ा थोड़ा लगाव हो जाता है, फिर झुकाव होता है, प्रभाव पड़ जाता है, और दूसरी तरफ कोई से थोड़ा सा टकराव हो गया, वैर विरोध हो गया, तो वो भी अपना प्रभाव डाल देता, उल्टा प्रभाव। तो हम सब बाबा के बच्चे, जैसे ब्रह्मा बाबा ने हर बच्चे को निर्दोष दृष्टि से देखा, भले बाबा कोई का कोई ने अपमान किया, कोई ने श्रीमत का उल्लंघन किया, कोई ने बाबा के नाम को बहुत कलंक लगाए, लेकिन बाबा ने उनको कभी भी दोष नहीं दिया, उनके प्रति ऐसी भावनाएं नहीं रखी, उनसे विरोध नहीं किया। यही एक शब्द बाबा के थे, बच्चे ये सब परवश हैं, परवश हैं, ये अपने आप नहीं कर रहे हैं, इनसे माया करा रही है, ये माया का दोष है, मेरे बच्चों का दोष है। ऐसा कभी बाबा ने उनको उस दृष्टि से भी नहीं देखा, उनके प्रति नफरत नहीं, घृणा नहीं, विरोध नहीं। ठीक है, बच्चे अनजान हैं, अभी परवश हैं, पहचानते नहीं हैं, इसलिए ये ग्लानी कर रहे हैं, इसलिए विघ्न डाल रहे हैं, इस नज़र से बाबा ने क्षमा किया उन सबको। और उसी भावना से आप देखो यज्ञ को कैसे उन्होंने संभाला। कोई भी बात हो जाती है परिवार में तो फटाफट हम उससे दुश्मनी लेने लगते हैं, उससे हम वैर विरोध रख लेते हैं, कहीं पर कोई ऐसी घटनाएं घटती हैं हम कहते हैं इस पर केस कर दो, इस पर ये कर दो। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक क्लास करा रहा था, कोई एक जगह पर ऑनलाइन बहुत क्लासेज हुई हैं इस बारी, तो मेरे पास प्रश्न आया उसी समय कि एक चैनल है जिसमें ब्रह्मा कुमारी के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, आप छुट्टी दो, मेरे से पूछते हैं तो हम इस पर मानहानि का केस करते हैं, क्योंकि समझता ही नहीं है, रोज़ कुछ ना कुछ उल्टा बोलता है। मैंने कहा बाबा ने तो मना किया है, कभी नहीं कहा है बच्चे किसी पर केस कर दो, केस में उलझ जाओ खुद भी और उसको भी उलझाओ, ऊपर बस है, वो निर्दोष है, आप बच्चे उसकी सेवा करो, उसके पास जाओ, उससे मिलो, उसको बताओ, वो एक दिन समझ जाएगा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक बार बाबा के लिए बहुत कुछ उल्टा सीधा अखबारों में लिख दिया, कलकत्ता का अखबार था और दादी हमारी बाबा की जो बेटी निर्मल शांता दादी वो कलकत्ता में रहती थी, जब उन्होंने अखबार देखा और उनको गुस्सा आया थोड़ा सा कि ये क्या मेरे बाबा के लिए बोलती, उसको साइकिल की दुकान थी, अखबारों में लिख दिया। अब बाबा जवाहरी, बाबा का इतना बड़ा बिजनेस हीरे जवाहरात का, और उसको लिख दे कोई तो साइकिल की दुकान करता था, ये तो ऐसा था ऐसा था, बहुत उल्टा सीधा अखबारों में लिखा। तो दादी को आया कि मैं तो इस पर जरूर मानहानि का केस करूँगी, लेकिन बिना बाबा की श्रीमत के, बिना बाबा के पूछे तो कुछ बच्चे कर ही नहीं सकते थे। तो बाबा को कहा, बाबा ऐसे ऐसे आपके बारे में इन्होंने बोला है, मैं तो नहीं सहन कर पाती, मैं तो इस पर केस करूँगी। बाबा ने पूछा, अच्छा बच्ची बताओ अखबार वाले अखबार का नाम क्या है? तो उस अखबार का नाम था विश्वामित्र। तो बाबा ने कहा, बच्ची उस अखबार में अखबार वाले को लिखो, उसके मालिक को, तुम तो बहुत अच्छा अखबार निकालता है विश्वामित्र, तुम हमारा तो परम मित्र है, और निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई, तो निंदा करने वाला आपने निंदा की है, आप हमारे बहुत बड़े मित्र हो। जब उसको लिखा लेटर, तो उसने सामने से ही आकर के माफ़ी मांगी, और उसके बाद उसने उस बात को चेंज कर लिया कि नहीं, हमारा ही गलती है, हमारा ही दोष है। तो कहने का भाव है कि बाबा ने कभी भी बच्चों को, बच्चों पर केस बाप करे ऐसा संभव नहीं है, ये बच्चे हैं, ये निर्दोष हैं। तो कितनी बड़ी भावना थी बाबा की, और आज बच्चों को जब जोश आता है, ये कर दें ये कर दें ये कर दें, लेकिन ये फॉलो फादर नहीं है। फॉलो फादर करने वाले बच्चे बाबा की तीन मुख्य धारणाओं को जरूर फॉलो करेंगे। एक, बाबा ने अपने को सदा निमित्त भाव में रखा, कभी नहीं कहा मैं कर रहा हूँ। मुरली अगर चला के बाबा आए और बाबा की कोई पर्सनल महिमा कर दे, बाबा आज आपने बहुत अच्छी मुरली चलाई, साकार में ब्रह्मा बाबा को कोई कहे आकर के, बाबा के बच्चे मैंने कहा मुरली चलाई, मुरली चलाने वाला तो शिव बाबा है, वो पढ़ा रहा है, तुम मेरे में नहीं अटक जाना, मैंने कुछ नहीं किया। ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को सदा ये गुप्त रखा, कभी भी अपने आप को ये नहीं, मैंने बड़ा अच्छा क्लास कराया, मैंने बड़ी अच्छी मुरली चलाई, मैं बच्चों की बहुत अच्छी पालना कर रहा हूँ, मैं बहुत प्यार से बहुत अच्छा यज्ञ को आगे बढ़ा रहा हूँ, संभाल कर रहा हूँ। ब्रह्मा बाबा ने इस मैं को संपूर्ण त्याग करके इतना निरहंकारी नम्र चित्त बन करके रहे, या तो बाबा कर रहा है या मेरे बच्चे कर रहे हैं, मैं क्या करता हूँ, इसको तो याद भी नहीं करना, ये तो बीच में दलाल है। शादी तो पति पत्नी की होती है, आप बच्चों की इसी बाबा से सगाई हुई है, मेरा कोई रोल नहीं है, मैंने करा दिया आप जानो। तो ब्रह्मा बाबा ने कैसे सब कुछ करके अपने आप को छिपाया, और आजकल फॉलो करने वाले क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा भी करते हैं तो कम से कम मुझे स्टेज तो मिले, कोई मेरा नाम तो ले, कुछ महिमा तो हो जाए। तो ये जो नाम की मान की शान की जो इच्छाएं हैं अंदर से, वास्तव में ये फॉलो फादर नहीं है। फॉलो फादर करने वाली आत्मा कितना भी पुण्य कर्म, अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म करती है, वो यही समझती है मेरा भाग्य, भाग्य विधाता ने बना लिया, मैंने क्या किया, उसने किया उसने कराया, हमने तो निमित्त हाथ आगे बढ़ाया। तो जहाँ निमित्त भाव है वहाँ फॉलो फादर है, और जहाँ मैंपन का भाव आया वो या तो कोई भाई बहनों को फॉलो करते हैं या अपने अभिमान को फॉलो कर रहे हैं। तो हम सब बाबा के बच्चे ब्रह्मा बाबा के समान, अपनी दादियों के समान। आपको एक बात शायद हमारी क्लासेस में सुनी हो, एक दिन की बात है, हमारी दादी प्रकाशमणि जी लास्ट दिनों में 2007 में उन्होंने शरीर छोड़ा, अगस्त महीना चल रहा है, यही अगस्त मास की 25 तारीख को उन्होंने अपना ये शरीर छोड़ा था। तो मैं 2-3 साल जब दादी थोड़ा बिस्तर पर ऊपर नहीं आ सकी तो रोज़ जाता था यहाँ से, हमारा अप डाउन होता था, यहाँ रोज़ आना शाम को सुबह जाना, तो जाते ही दादी से मिलते थे जा कर के। तो एक दिन दादी ऐसे आंख बंद करके बैठी थी, मैं गया बैठ गया बाजू में, कहा दादी, तो देखा अच्छा ऊपर से आया हो, कहा हाँ दादी, कैसे पांडव भवन में सब ठीक है? बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, ठीक है, सब ठीक है। फिर पूछा ज्ञान सरोवर कैसा है? ज्ञान सरोवर भी मैंने अपने, ये तो बोलूँगा ना, ये तो बताऊँगा नहीं, कुछ हुआ भी नीचे ऊपर कर, दादी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसे ऐसे तीन चार प्रश्न उन्होंने मेरे से पूछे और मैंने जब बोला सब दादी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ठीक चल रहा है, तो ऐसे अचानक बोलती है अच्छा कैसे चल रहा है, पहले बोला क्या चल रहा है फिर बोलती कैसे चल रहा है। दादी कैसे चल रहा है, आप इतनी सुभावना इतनी शक्तिशाली याद में यहाँ रहते हैं, आपके सूक्ष्म संकल्पों से आपकी शुभ भावनाओं से सारी कारोबार बहुत अच्छे चल रही है, सब अच्छे से अच्छा चल रहा है। तो ऐसे मेरे को आंख दिखा के कहती क्या बोला, दादी आपकी शुभ भावनाओं से आपके श्रेष्ठ संकल्पों से सारी कारोबार यज्ञ की बहुत अच्छी चल रही। तो कहती है अरे क्या बोलता है तुम, मेरे संकल्प से तुम भूल गया, बाबा के संकल्प से चलता है, बाबा कराने वाला है, हम लोग क्या कर रहे हैं। इतना निमित्त भाव, हम सब जानते हैं इन दादियों की शुभ भावनाएं, यज्ञ के प्रति प्यार, उनका शुभ संकल्प यज्ञ को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी महिमा स्वीकार नहीं की। मैं कर रही हूँ मेरा योग है, इसको भी उन्होंने मैं को परिवर्तन कर दिया और इतनी नम्रता से बोली भूल जा तुम, हम कुछ नहीं करते, तुम कुछ नहीं करता, कराने वाला करा रहा है, उसका ये सब यज्ञ है, उसके बच्चे हैं, उसका कार्य चल रहा है और गुप्त रीति से सब कुछ कर रहा है। तो इतनी निमित्त और निमित्त के साथ इतनी ही नम्रचित, कहीं अहंकार बड़प्पन का, प्रशासिका का, मुख्य का, हेड का अहंकार उनके बोल में, चलन में, व्यवहार में कहीं भी दिखाई नहीं दिया। इतनी नम्रता का अवतार बन करके रही, नहीं तो कहाँ दादी की स्टेज, कहाँ वो, और कहाँ हम लोग जाके साथ में सोफे पे बैठ जाएं, साथ में उनसे खाएं पिए खेलें, बहुत बड़ी बात है, नम्रता के कारण ही हो सकता है। तो जितनी निमित्त भाव उतना ही नर्मचित, निर्माण चित और साथ साथ निर्मल वाणी। कभी भी किसी के प्रति कोई कटु वचन, कठोर वचन नहीं बोले, बहुत निर्मल मधुर वाणी से सबको संबोधित किया। हम लोग चलते चलते कुछ अपने समझ के कारण, बुद्धि के कारण, अनुभव के कारण कोई ठीक नहीं करता है, ठीक नहीं लगता है तो क्या करते हैं, तुरंत कट कर देते हैं। हमारे बाबा ने, हमारी दादियों ने कभी भी किसी के स्वमान को ठेस नहीं पहुँचाई। गलत है, वो गलत कर रहा है, गलत बोल रहा है, उसकी राय भी ठीक नहीं है, फिर भी उनके गाइड करने के तरीकों को मैं आपके आगे रख रहा हूँ, फॉलो करना है, ऐसे नहीं सुन लेना, फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा को, ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा तो दादियों को फॉलो करके देखो, इन्होंने करके दिखाया। कोई ने राय दी मान लो ठीक नहीं है, जानते हैं श्रीमत के अनुकूल नहीं है, इससे कुछ नुकसान हो सकता है, तो भी तुरंत उसकी राय को उन्होंने कट नहीं किया, ठीक है तुमने अपनी समझ से बात कही है, बहुत अच्छी है, ऐसे बहुत अच्छी है, इस पर विचार करेंगे, इस पर हम आपस में विचार करें फिर बताएंगे आपको। उस समय जो उसका सम्मान, उसका सम्मान है, जिस तरह से वो आपके पास आया है अपनी समझ से, अपनी बुद्धि की समझ से, वो समझता है मैं जो कह रहा हूँ, मेरी जो राय है वो बिल्कुल राइट है। अब वो राइट समझ करके आपके आगे रख रहा है और आपने अगर उसके उसको तुरंत कट कर दिया है, बिल्कुल ठीक नहीं है, इससे ये नुकसान हो जाएगा, तो वो आपसे दूरी बनाएगा, वो कभी आपके आगे आएगा ही नहीं, वो कहेगा ये तो मानते ही नहीं, ये तो सुनते ही नहीं है, ये तो हमारी बात को कोई रिस्पेक्ट नहीं देते। इसलिए बाबा ने, दादियों ने करके दिखाया, सबको सम्मान दिया, और इसीलिए सम्मान देने के कारण किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। आज सारा परिवार बाबा को कहता है दिल से मेरा बाबा, दादियों को कहता है मेरी दादी, मेरी दीदी। अपनेपन की जो फीलिंग है, मैं समझता हूँ वो दादियों ने जो सबको सम्मान दिया, ऐसे ही हम सबको अगर सम्मान देना सीख जाते हैं, उसमें थोड़ा झुकना पड़ता है, थोड़ा सहन करना पड़ता है, लेकिन अगर सम्मान दे देते हैं तो सामने वाले को सम्मान देना ही पड़ता है। तो दादियों ने बहुत नम्रता के साथ, एक दिन की बात सुनाता हूँ, ये पहले पहले शुरू की बात है, बड़े बड़े मेले हो रहे थे, तो एक मेला देखने के लिए दादी ने हम लोगों को भेज दिया। 73 में रामलीला ग्राउंड में बड़ा मेला था, 72 में ही था। तो दादी ने कहा सब मधुबन वाले आए हैं तो जाओ, एक सुबह जाओ शाम को वहाँ से आ जाना, केवल उसी ट्रेन से जाओ, उसी ट्रेन से दिन में घूम करके मेला देख के आ जाओ। तो हम गए तो मेले में चक्कर लगा रहे थे और दादी तो वहाँ पूरी कंट्रोलर थी मेले की। हमने दादी को देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया कि दादी जी चक्कर पर है और हम आगे आगे थे, दादी पीछे पीछे थी। तो दादी ऐसे पीछे से आई और मेरे को ऐसे पीछे से मारा, ऐसे क्या हो रहा है ऐसे कह के ओम शांति, ऐसे झुक कर ओम शांति। क्या सिखाया कि बड़ों को मिलो तो बड़े नम्रता से पहले उसको ओम शांति नमस्ते करो और बहुत प्यार से एकदम नम्रचित होकर के झुक कर के ऐसे नमस्ते किया, ओम शांति किया। इन बड़ों ने अपने से छोटे हैं या बड़े हैं उनको इतना रिगार्ड दिया, रिस्पेक्ट दिया और इसलिए हम सबके नैनों में, उनकी नज़रों में हमारे प्रति या उनके प्रति हमारे अंदर बहुत दिल का स्नेह है, प्यार है, सम्मान है। हम अपने लौकिक में अलौकिक में सम्मान तो चाहते हैं कि सब प्यार से बात करें, सम्मान से बात करें, रिस्पेक्ट दें, लेकिन बाबा कहता है आप देते हो पहले, आप दोगे तो आपको मिलेगा, ये चीज़ मांगने की नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को इतना सम्मान दिया, दादियों ने हम सबको इतना सम्मान दिया और वो सम्मान योग्य बन गई। तो स्वमान में रहना, अपने स्वमान में रहना, स्वमान समझते हो ना क्या है, बाबा ने हम सबको जो आत्मा का निजी मान है, जो उसकी विशेषताएं हैं, जो उसका टाइटल है, उसकी स्मृति दिलाई। आप कौन सी आत्मा हो, स्वयं स्वयं को पहचानूं मैं कौन हूँ। हम साधारण आत्माएं नहीं हैं, हम इस विश्व नाटक की हीरो पार्टधारी आत्माएं, सारे कल्प के अंदर नंबर वन आत्मा के साथ पार्ट बजाने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्माएं, सतयुग से कलयुग अंत तक पूरे चक्र के अंदर सबसे नंबर वन पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं। बाबा कई बार कहते हैं अगर मेरा कोई लास्ट इस माला के मणके का लास्ट दाना है, 9 लाख की माला का भी लास्ट मणके का दाना है, तो वो भी आजकल की VVIP आत्मा से भी महान है। क्यों? क्योंकि उसने भगवान को पहचाना है, उसने भगवान को निराकार को पहचान करके दिल से मेरा बाबा कहा है, भले उसकी और कोई धारणाएं हैं या नहीं है, लेकिन बाबा को पहचानना ये बहुत बड़ी भाग्य की बात है कि उस निराकार ज्योति बिंदु को पहचान करके उसको दिल से कहना मेरा बाबा। तो बाबा ने तो इस नज़र से हम बच्चों को देखा है। अगर हम अपने आप को इतना ही श्रेष्ठ भाग्यवान समझ करके चलते हैं कि हम दुनिया के कोटों में कोई आत्मा इतनी श्रेष्ठ है, इतनी महान है, तो उस स्वमान में रहने वाली आत्मा अभिमान में नहीं आती। अभिमान आजकल क्या है, कोई के पास पैसा है तो उसका अभिमान है, कोई के पास कोई पद है, पोजीशन है, उसका अभिमान है, कोई का कुल बड़ा है, कोई के अनुभव अच्छे हैं, कोई की कोई विशेषताएं, उसका अभिमान है, अपनी कलाओं का अभिमान है, अपनी पढ़ाई का अभिमान है, और अभिमान के कारण फौरन किसी का भी अपमान कर देता है। मेरी बात नहीं समझी जाती, मैं अनुभवी हूँ, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल राइट कह रहा हूँ। दूसरी आत्माओं के पास उसको ये आता है जैसा मैं कहता हूँ ऐसा इसको करना चाहिए, और नहीं करता है तो कहते हैं हमारी क्या इज्जत है, वो अपना अपमान महसूस करता है। बाबा हम बच्चों को कहते हैं, ब्रह्मा बाबा ने कभी भी अभिमान के रूप में ये नहीं कहा मैं संस्था का मुखिया हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैंने स्थापना की है, मैंने समर्पित किया है, मैंने यज्ञ को चलाया है, कहीं पर किसी मुरली में है। जब ब्रह्मा बाबा कहता बच्चे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सब माताएं बहनें कर रही हैं। ब्रह्मा बाबा ने जिस दिन से अपनी संपत्ति बाबा बहनों के आगे समर्पित की, उस दिन से ये नहीं पूछा वो गई कहाँ। 400 बच्चे आए रहे, खाया पिया, आराम से मौज से रहे, लेकिन बाबा ने एक दिन भी हिसाब नहीं पूछा कहाँ गया वो सब, समर्पित कर दिया। तो समर्पित माना समर्पित। तो ब्रह्मा बाबा को हम फॉलो तो करना चाहते हैं, फॉलो फादर कहते हैं, लेकिन कितना हम बाबा की तरह अपने आप को समर्पित बुद्धि समझते हैं, जो बाबा करा रहा है, जो हमने किया है, ये हमारा भाग्य है। इसलिए भाग्य विधाता हमारा भाग्य बनाने के लिए श्रेष्ठ कर्म करा रहा है। तो अपने ऊंचे सम्मान में रहना और सबको बहुत दिल से सम्मान देना, ये ब्रह्मा बाबा ने और दादियों ने प्रैक्टिकल किया है। और हम सबको भी ये बाबा कहते हैं, बच्चे केवल फॉलो करो, फॉलो फादर। ऐसा अगर फॉलो करोगे तो उनके समान बन जाओगे। तो आज्ञाकारी, ईमानदारी, वफादारी, फरमानवरदारी, बहुत फरमान को, हर फरमान को, ऐसे नहीं शिव बाबा का फरमान, जैसे आजकल मुरलियों में बार बार पवित्रता की बात आती है, ये फरमान है शिव बाबा का। बच्चे इस कलयुग के अंत में इसके पीछे कितने झगड़े हैं, कितनी लड़ाइयाँ हैं, कई बार बाबा को इस बात में कंप्रोमाइज करने की बातें करने लोग आए। आप जानते हो सिंध में जब हंगामे हुए हैं, अन्न खान भोजन की बात तो सेकेंड नंबर थी, लेकिन ये जो ब्रह्मचर्य की पवित्रता की बात थी, छोटे छोटी बहनें शादी करके आई हैं और कहती हम तो विष नहीं देंगे, पवित्र जीवन जिएंगे, वहीं पर सब घरों में झगड़े हुए। बाबा के संबंधी, अब बाबा ने जिनसे अपनी बेटियों की शादी कराई है, बड़े घरों में कराई है, निर्मल शांता दादी की भी शादी हुई थी, उनकी बड़ी बेटी पुट्टो थी उनकी भी शादी हुई थी, अब उनके घरों वाले बड़े सेठ करोड़पति लोग, उनकी बहू में अगर कहें हम अपने घर में न लहसुन प्याज बनेगा, न मांस मदिरा बनेगा, मैं पवित्र जीवन जीऊँगी, तो सारे विरोधी हो गए, सारा समाज विरोधी हो गया। और बाबा को समझाने की कोशिश की, बाबा आपका ज्ञान बड़ा अच्छा है, सत्संग आप भले चलाते हो, पहले भी चलाते थे, केवल आप ये कहना बंद कर दो। अब बाबा कहे, बच्चे मैं थोड़ी कहता हूँ, मैं तो खुद प्रवृत्ति वाला हूँ, मैं तो खुद गृहस्थी हूँ, ये तो शिव बाबा आकर के इनको कहता और ये मानते हैं, मैं क्या करूँ। काम क्रोध नरक के द्वार है, इन्होंने समझा है और इसको पालन कर रहे हैं, तो मैं शिव बाबा को, भगवान को तो कट नहीं कर सकता हूँ, इसमें तो कोई कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकती। इतनी बाबा ने सब बातों को सहन किया, सामना किया, गालियाँ खाई, विरोध हुए, लेकिन पवित्रता भगवान का डायरेक्शन है, उनका फरमान है, इसका उल्लंघन नहीं करना है। इतना दृढ़ता के साथ सबको पालन कराया, नियमों पर चलाया, उसको नींव को मजबूत किया। इसलिए कुछ भी हो, कैसी भी बातें आएं, हम सब बाबा के फरमान वरदार बन करके रहें। फरमान को मानना, जैसे मिलिट्री के अंदर फरमान होता है, अगर कोई उल्लंघन कर देता है तो सूट हो जाता है, ऐसे बाबा कहते हैं अगर इस फरमान का उल्लंघन किया तो माया सूट कर देगी। हम सब ध्यान दें इस बात पर। तो ब्रह्मा बाबा आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार और फरमान वरदार बन करके निमित्त निर्माण और निर्मल वाणी के आधार से संपन्नता को प्राप्त कर लिया। और बहुत सारी विशेषताएं हैं ब्रह्मा बाबा के, तो सैकड़ों कदम हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा की जो भी प्रैक्टिकल जीवन थी, जिन्होंने उसको देखा, उन्होंने वर्णन खुद भी किया, और बाबा ने अव्यक्त होने के बाद खुद भी वर्णन किया कि ब्रह्मा ने ये किया, ब्रह्मा ने ये किया, ब्रह्मा अब इसको फॉलो करो। हम सब बाबा के बच्चे कहते श्रीमत क्या है, किसकी माने किसकी न माने, बाबा कहता श्रीमत केवल मुरली है, और कोई भी मत को श्रीमत नहीं कहते, कितना भी बड़ा हो। आप बाबा की मुरली को ध्यान से पढ़ो, बाबा ने एक एक बात बहुत स्पष्ट रीति से सब कुछ सुनाया है, सिखाया है, बताया है, और ड्रामानुसार आज तक भी अनुभव होता है, लोगों को भी होता है, मेरे को भी होता है, जिस दिन की कोई प्रॉब्लम होती है, जिस दिन की कोई परीक्षा होती है, उस दिन की मुरली में उसका उत्तर होता है। ये बाबा की कमाल है। मुझे कोई कहता आपने किया, मैं क्या करता हूँ, मैं तो 3 महीने पहले मुरली सेट कर देता हूँ। सेटिंग तो है, ये तो ध्यान रखता हूँ कि भाई अगर आज गुरुवार है तो शुक्रवार के दिन वो न मुरली चले, क्यों बाबा कह रहा आज गुरुवार है और आप शुक्रवार को सुनाओ या शनिवार को सुनाओ, तो लोग हंसेंगे कि मुरली बनाने वाले ने गुरुवार की मुरली को शनिवार को क्यों भेजा। अब आज मान लो दीपावली आएगी, अभी मेरे पास दीपावली की मुरलियाँ चल रही हैं, सेटिंग हो रही है। अब बाबा कहे आज दिवाली है और होली के त्यौहार हो या राखी का त्यौहार हो, तो तो आप पढ़ने वाले टीचर्स सुनाएंगे तो क्या कहेंगे, बाबा तो आज कह रहा आज दिवाली है। तो ये हम ध्यान रखते हैं कि दिवाली के दिन अगर दिवाली की मुरली चलेगी तो ब्राह्मणों को कुछ फायदा होगा, उनको खुशी होगी आज की मुरली है बाबा की, ये ध्यान रखता हूँ। लेकिन बाकी किसके आगे, ब्राह्मणों के आगे क्या प्रॉब्लम है, किस प्रकार की समस्या है, वो तो मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं, वो तो ऊपर वाला जानता है। हम सिर्फ एक ही लक्ष्य रखते हैं कि बाबा का राइट हैंड्स, राइट इंस्ट्रूमेंट बन करके रहो। जब भी सेटिंग करो, सेटिंग करने बैठता हूँ, बाबा को कहता हूँ बाबा ये आपके बच्चे हैं, पूरा विश्व आपके मुरलियों पर आधारित है, और आपको जो कुछ भेजना है, जो कुछ कराना है, जो वरदान देना है, मैं आपके आगे सरेंडर हूँ, आप आओ और करा दो। जो अपनी बुद्धि चलाने की क्या ज़रूरत है, जब बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा है तो अपने आप कराएगा, जो उसको कराना है कराएगा, मैं क्यों सोचूं। तो इतना जब निमित्त भाव से कोई कार्य किया जाता है तो अपने आप नम्रता भी रहती है, कभी अहंकार नहीं आता है। कोई कितने भी बायोडेटा के अंदर बड़ी बड़ी बातें सुनाए या न सुनाए, अपना क्या जाता है। जब बाबा सब कुछ करा रहा है, उसका ये खेल चल रहा है कठपुतली की तरह, वो नचाने वाला है, तो हम कर रहे हैं, मैंने किया है, मेरा ये कार्य है, मेरा रोल है। बाबा कहता है इस मेरे को तुम मार दे, हल्का बन जाओ। जैसे बाबा इतना सब कुछ करते हुए डबल लाइट रहे, कभी कोई बोझ नहीं। कभी कभी एक रमणीक बात बाबा की मुरली में आती है, साकार बाबा की। एक बार यहाँ पर हमारे दादा चंद्रहास थे, चंद्रहास दादा कंस्ट्रक्शन का काम देखते थे, तो कंस्ट्रक्शन का काम देखते थे तो बहुत सारी बातें, यहाँ नया नया निर्माण कार्य शुरू हुआ था पांडव भवन में, तो बाबा को कहते थे बाबा मैं बहुत बिजी रहता हूँ, बहुत बिजी है, बहुत काम है। और बाबा कहते थे तेरे को तो छोटा सा काम है। अरे ब्रह्मा बाबा कितना बड़ा बछड़े वाला है, कितने उसके बच्चे हैं, जिसके मत्थे माँ मिला उसको नींद कहाँ से आए, ब्रह्मा बाबा को भी तो बहुत मामले हैं ना, तुमको क्या है। तो ब्रह्मा बाबा कभी कभी कहते थे, लेकिन कभी भी उन बातों को ऐसा नहीं समझा ये मेरा काम है, ये मेरे बच्चे हैं, ये सब शिव बाबा के हैं। इतना नम्रता के साथ, निर्माणता के साथ, उसके बच्चे हैं, उनकी जवाबदारी है, वो जो जैसे चलाएगा, जैसे रखेगा, वो जाने। कितनी बड़ी बात है अगर आपके परिवार में 5 सदस्य 10 सदस्य हों और आपके भंडारे में, आपके पास उनको पालना देने के लिए, उनको भोजन के लिए भी पैसा ना हो। एक दिन भी अगर आपके आगे ऐसी परिस्थिति आ जाए तो कितना अंदर हलचल होगी, अब क्या करें, कहाँ से कर्ज लें, कहाँ से एक सहयोग मिले जो हम अपने परिवार को चलाएं। और बाबा का 400 का परिवार, और बाबा की भंडारी में सवेरे भंडारे वाले पूछते बाबा दोपहर को क्या बनेगा, कुछ भी नहीं है भंडारे में, धन भी नहीं है जिससे आएगा, और खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। और बाबा बड़ा निश्चिंत, बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर का बादशाह, अच्छा बच्चे ठीक है 10 बजे तक इंतजार करो। 10 बजे कहाँ से आएगा। लेकिन ऐसा कोई भी दिन नहीं था जो बाबा के घर में दोपहर का भोजन न मिला हो। सुबह नाश्ते पर तो बाबा बहुत रमणीकता से कहता था चलो बच्चे यहाँ जंगल के अंदर बहुत चेरियाँ हैं, जामुन हैं, अंगूर हैं, कई प्रकार के फल जंगल में हैं। बरसातों के दिन थे जब ऐसा पाठ चला था, बाबा ऐसे सबको घुमाने ले जाता तो कहता जितना खाओ ये आपका, ये सब कुछ है। सुबह खिला के घुमा फिरा करके आता था, कहता बच्चे रेस्ट करो 1 बजे बेल बज जाएगी। तो ऐसी परिस्थितियां भी आई यज्ञ के आगे, और बाबा उन परिस्थितियों में क्या लिखवाता था अखबार के अंदर, बच्चे लिख दो ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। सारे सिंधी लोग जो सहयोग नहीं दे रहे थे, जो समझ रहे थे अभी संस्था इनकी खत्म हो जाए, मेरे बच्चे वापस आ जाएं, उनके आगे ये जब आता था कि बाबा इसे लिखवा रहा अखबार में कि रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, कौन सा नशा है बाबा को। बाबा कहता था जो आप बच्चों के पास धन है, ज्ञान का धन, गुणों का धन, शक्तियों का धन, किसी के पास भी नहीं है, अब इस धन का दान करो, वो धन अपने आप आ जाएगा। ये बाबा की परीक्षा है, क्योंकि आप बच्चे यहाँ से सेवा पर निकल ही नहीं रहे हो, इसलिए बाबा ने परीक्षा ली है। आप इसको दान करके तो देखो। तो जब ये ज्ञान धन गुणों का धन लेके बहने गई हैं और सुनाना शुरू कर दिया है, तो वो अपने आप आने लगा, सब चीज़ें संपन्न कर दी, भरपूर कर दी। एक दिन भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दिया। हमेशा बाबा का यही स्लोगन रहा, मांगने से मरना भला, मर जाना लेकिन तुम हाथ नहीं फैलाना। अब ये एक इतना बड़ा वंडरफुल नशा था ब्रह्मा बाबा का, क्योंकि उनको निश्चय था बच्चे शिव बाबा के हैं, वो पालने वाला है, वो खिलाने वाला है, बच्चों को भूखा कैसे रख सकता। तो उसी निश्चय के आधार से बाबा एकदम निश्चिंत स्थिति में रहे। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने आर्थिक परीक्षाओं को पास किया, ब्रह्मा बाबा ने शारीरिक पेपर्स को भी क्रॉस किया, ब्रह्मा बाबा ने लौकिक और अलौकिक दोनों परिवार से परीक्षाएं आई और उनको पार किया, तो क्या हम फॉलो फादर कर रहे हैं, करेंगे? हमारे आगे अगर कोई बात आए, कैसे आ गई, हम तो बाबा के प्रति इतना समर्पित है, हमको तो बहुत बाबा ने के प्रति किया है, हमने हमारे आगे क्यों आ गए? लेकिन ब्रह्मा बाबा के आगे कभी क्वेश्चन नहीं आया कि पेपर क्यों आया। बाबा जानते थे कुछ न कुछ इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए पेपर आया। पेपर आता ही है क्लास आगे बढ़ाने के लिए। तो पेपर सब प्रकार के आए और ब्रह्मा बाबा ने बहुत निश्चिंत होकर के, बेफिक्र स्थिति में रह करके, एक बल, एक भरोसा, एक निश्चय के आधार से अपने आप को स्थिर रखा, अचल अडोल रखा, निश्चिंत स्थिति में रहे। हम बच्चे फॉलो करें, ऐसे फॉलो फादर। कुछ भी हो जाए, जब भगवान को हाथ दिया है, सर्वसमर्थ है, हजार भुजाओं वाला है, जब ये निश्चय है तो निश्चिंत स्थिति में रहना। हलचल में ना आए, कैसी भी परीक्षाएं आए, परीक्षाएं हमारे को आगे बढ़ाने के लिए आई हैं। परीक्षाएं हमारी स्थिति को डगमग न करें, अचल रहें, अडोल रहें, एक रस रहें। ऐसी स्थिति जैसे ब्रह्मा बाबा ने बनाई, हम सब बच्चों को कहते हैं फॉलो फादर, बच्चे और कुछ नहीं करो। तो इस निश्चय के फाउंडेशन को पक्का करना, पवित्रता के फाउंडेशन को पक्का करना, अनुभव के फाउंडेशन को पक्का करना और ज्ञान योग के फाउंडेशन को पक्का करना, तो कैसे भी तूफान हिला नहीं सकेंगे। ब्रह्मा बाबा ने ऐसी अचल अडोल एक रस स्थिति का स्तंभ बन के दिखाया, तब तो उनका शांति स्तंभ यादगार बना है। तो हम सब बच्चे भी उनके समान अपनी अचल अडोल स्तंभ के समान मजबूत स्थिति बनाएं, यही है फॉलो फादर। ठीक है, समय हो गया।